नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जल दिवस के मौके पर पानी बर्बाद नहीं करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का आह्वान किया। प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में 2 से 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान देश में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस और ऊर्जा तथा उर्वरक आपूर्ति से जुड़ी स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें देश भर में जरूरी चीजों की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखे हुए है। इस बीच प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर सामान्य रूप से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में प्रशासन की ओर से सतर्कता दल एलपीजी कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड के जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है और इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से पैनिक होकर अनावश्यक बुकिंग नहीं करने की अपील की है।
बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, किसी को पैनिक की जरूरत नहीं। मैं सबसे अपील करूंगा कि पैनिक बुकिंग नहीं कराए, आराम से गैस मिल रही है आपको। 25 या 45 दिन का जो बैरियर लगा है उसकी पालना करें और धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी ये बैरियर भी कम होते जाएंगे। हमने एक कंट्रोल सिस्टम खोल रखा है, 14435 हेल्पलाइन नंबर है, 181 तो है ही अपनी, कहीं भी उपभोक्ता कंप्लेन लगा सकता है। 24 घंटे और 7 दिन हमारा कंट्रोल सिस्टम खुला हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासन अध्यक्ष बन गए हैं। श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से 8931 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। श्री मोदी के नाम सबसे अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने और प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड शामिल है। श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। श्री मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। वहीं इस साल फरवरी में सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर श्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है, जो दुनिया के किसी भी सेवारत राजनेता से कहीं अधिक है। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से पानी की हर बूंद के संरक्षण और उसके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सतत विकास में लगे हुए, जागरूकता फैलाने और जल संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों की सराहना भी की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल महोत्सव 2026 के समापन कार्यक्रम और सुजल ग्राम संवाद के माध्यम से देश भर से जुड़े सहभागियों के साथ संवाद किया। उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 की गाइडलाइंस का भी विमोचन किया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जल दिवस के अवसर पर पानी बर्बाद नहीं करने और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का आह्वान किया है। विश्व जल दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए। सरहदी जिले जैसलमेर में भुवाड़ा, धनाना और हमीरों की बस्ती सहित अनेक स्थानों पर जल जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अजमेर में जावाजा की पाल पर जल संसाधन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने जल स्रोत के संरक्षण का संकल्प लिया। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है और आम आदमी तक सस्ती बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सौभाग्य योजना और पीएम सूर्यघर जैसी योजनाओं के माध्यम से अब देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक बिजली पहुंच चुकी है, जिनमें सीमावर्ती इलाके भी शामिल हैं।
सौभाग्य योजना में हमने गांव में बिजली पहुंचाई, सबके घरों में बिजली पहुंचा दी है। बहुत दूर दराज के जो गांव बॉर्डर पर हैं, वहां तक भी बिजली पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इक्का दुक्का गांव बचे होंगे दूर पहाड़ों में, जंगलों में, वहां भी वाइब्रेंट विलेज इस नाम से उसकी कल्पना की गई है, तो हम उस पर भी आगे बढ़ा रहे हैं।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी कल सातवें चरण की खनिज ब्लॉक नीलामी की शुरुआत करेंगे। इनमें राजस्थान सहित कई राज्यों के 19 ब्लॉक शामिल है। इस पहल का उद्देश्य देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना है। खान मंत्रालय ने बताया कि ये नीलामी ऑनलाइन होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 300 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण देने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस सहयोग से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे करवाकर जल्द रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की पीड़ा सरकार की पीड़ा है, राजस्थान की समृद्धि का आधार अन्नदाता है और संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। प्रदेश में जहां मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर बढ़ने लगा था, वहीं अब बादल, बारिश और ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। वहीं मौसम विभाग ने आज बीकानेर, सीकर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, डीग और झुंझुनू सहित 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट बताया है। साथ ही इन इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस बीच बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वहीं कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कहीं कहीं हुई फुहार और हल्की से मध्यम बरसात से तापमान में गिरावट आई है। अधिकतर स्थानों पर पारा सामान्य से 2 से 8 डिग्री नीचे मापा जा रहा है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज कोटा प्रवास पर रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनावों के लिए 6 महीने पहले ही पूरी तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावों की तारीख का ऐलान अब उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग पर निर्भर करता है।
पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था, नगर निकाय के चुनाव के लिए हम 6 महीने पहले सितंबर 2025 में पूरा कर चुके। अब राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उन दो के पास अपना अपना जो काम है वो कब पूरा करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय क्या निर्देश करेगा, इन तीनों के ऊपर निर्भर करेगा कि कब इन संस्थाओं के चुनाव होंगे।
श्री खर्रा ने यह भी बताया कि कोटा रिवर फ्रंट को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।
रिवर फ्रंट को लेकर बात हुई थी, मैंने उन्हें बताया कि संभावनाएं खोजें, क्या वहां टेंट सिटी हो सकती है या उसका जो दूसरा विकल्प है उस पर विचार करके, जो कम पैसे में जिससे व्यक्ति को अगर वो टेंट सिटी विकसित करता है और टेंट सिटी विकसित होगी तो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम डेस्टिनेशन वेडिंग का काम यहाँ अच्छा हो सकता है।
प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ये हवाई अड्डा हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास और अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से उदयपुर से कोटा और कोटा से भरतपुर के बीच संपर्क की स्थिति की भी जानकारी ली और इसे बेहतर बनाने के लिए और प्रयास करने को कहा। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करना आवश्यक है।
मुझे खुशी है कि जो कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इसकी टाइमलाइंस सही रूप से निर्धारित किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा काम शुरू किया गया है और जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो कोटा एरो सिटी प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये प्रोजेक्ट भी इसके समय सीमाएं निर्धारित किए गए हैं।
चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी आराधना से रोग शोक दूर होकर स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कल स्कंद माता की आराधना की जाएगी। नवरात्र पर्व पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं लोक पर्व गणगौर के दूसरे दिन आज राजधानी जयपुर में बूढ़ी गणगौर माता की सवारी निकाली जा रही है। सिटी पैलेस की जनानी से शुरू हुई सवारी में शाही लवाजमा, सजे धजे ऊंट घोड़े और लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जल दिवस के मौके पर पानी बर्बाद नहीं करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का आह्वान किया। प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में 2 से 8 डिग्री की गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।